ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय नाम्ने गौरविषये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया करोमि तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति राधे सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अश्वत सरस्वती भक्ति प्रज्ञान के सर्वोत्साह महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड और प्रण की ज्ञापन करता पश्चात शिक्षा अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों कोटि कोटि दंड प्रतिज्ञा अभी आप लोग मेरे साथ गोदावरी के तट पर आइए। यहाँ पर महाप्रभु और उनके भक्त श्री राय रामानंद बैठे हुए हैं। उससे पहले कल हमने बतलाया कि महाप्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व रीति के अनुसार सब लोगों को देश को वैष्णव करते हुए जीर्ण निसिंह गए और वहां स्तव स्तुति की और एक श्लोक कहा। एक श्लोक का तो हमने कल व्याख्या की थी। दूसरा श्लोक है उग्रो अपि अनुग्रह एवायं स्वभक्तानां निकेसरी केसरी व सपोतानां अन्येषु उग्र विक्रम। उग्रो अपि अनुग्रह सिंह बहुत उग्र होता है। किनके प्रति? स्वपोता नाम अन्येषु अपने जो बच्चे हैं उनके प्रति यदि कोई द्रोह आचरण करता है बहुत उग्र हो जाता है, किंतु अपने बच्चे के प्रति उग्र नहीं हो। तात्पर्य क्या? नृसिंह भगवान अपने पोत वो तो मैंने बच्चे प्रहलाद महाराज उनके प्रति यदि कोई अनादर करता है, उसके प्रति रूढ़ व्यवहार करता है तो नृसिंह भगवान क्रोधित हो जाते हैं, उसके को नहीं सह सकते। प्रहलाद महाराज का द्रोहाचरण कोई करे नहीं सहेंगे, और तो लोग को सबके प्रति सभी लोग द्रोहाचरण करते हैं, नृसिंह भगवान नहीं आते। किंतु नृसिंह भगवान जी के प्रहलाद जी बच्चे हैं, इसलिए जब उनके प्रति द्रोहाचरण हिरण्यकश्यपु किया, आ गए झट और हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे, विलंब हो गया। इसलिए इसी प्रकार से नृसिंह भगवान के चरणों में यदि कोई आश्रय ग्रहण करें तो सपोताना, जैसे अपने बच्चे होते हैं उनके प्रति दुहाचरण करने वाला कोई है, पर झट नृसिंह भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये चक्र जो देखते हो विष्णु के हाथों में, वो चक्र क्या है? वो नृसिंह देव ही है। इसलिए जब चक्र की पूजा होती है तो नृसिंह भगवान की उसमें पूजा होती है। इसलिए भक्तों के रक्षा करने वाले कृष्ण ही वो नृसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हम लोग नृसिंह देव की उपासना भी करते हैं, जैसे महाप्रभु जी करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं। यही मत नाना श्लोक स्तुति पड़ी, स्तुति कैला नृसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिया। तन नृसिंह जी का सेवक उनकी प्रसादी माला महाप्रभु जी के गले में डाल दी। पूर्ववत पहले की भांति महाप्रभु जब जाते हैं कहीं तो किसी घर में माँ धोकरी नहीं मांगते, विशेष करके जहां अनाचार है, मांस मछली प्याज लहसुन इत्यादि खाना है, वहां तो वो करते नहीं। किंतु सब देश में ही कुछ भक्त होते हैं जो प्याज लहसुन मांस मछली नहीं खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। आजकल ब्राह्मणों में भी दुराचार देखा जाता, इसलिए महाप्रभु ब्राह्मणों के घर में, विशेष करके जहां पर सदाचार नियम हो उसी के घर में माधुकरी लेते। एक ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण किया कि हमारे घर, महाप्रभु ने देखा ये भक्त है और ब्राह्मण भी है, सदाचारी है, उसी का घर में खाने से और जहां तहां खाने से धर्म का व्यतिक्रम होता है, हमारी भक्ति में बाधा आती है। इसलिए जहां तहां सबके यहां भोजन मत करो, डोंट टेक प्रसादम एनी वन हु इन्वाइट्स यू, यू शुड नो दैट ही इज ब्राह्मिन बाय हिज स्वभाव, बाय हिज नेचुरल ही इज ब्राह्मिन, ही मे बी ऑफ एनी कास्ट बट नेचुरली ही शुड बी लाइक ए ब्राह्मिन। And then, if you have offered to Thakur ji, and then you can take Mahaprabhu. So Mahaprabhu has established all kinds of truths. At that night, उस रात में वहीं पर रहे और फिर कुछ दिन चलते 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 गोदावरी के तट पर पहुंचे और सभी लोगों को वैष्णव करते हुए हमारा आज्ञा गुरु हरियाता रो, मैं आज्ञा देता हूं जिसको देखो उसी को कहो जो कृष्ण नाम जपो और उससे कहो जो वो वहां पर जितने लोग हैं उनको यही उपदेश दे कि तुम गुरु हो करके और कृष्ण नाम का प्रचार करो, भगवत भक्ति का प्रचार करो। इसलिए महाप्रभु ने शक्ति संचरित। यदि कहो, यदि वो कहते जब अभी गुरु कैसे हम हो सकते हैं, नहीं मैं शक्ति संचरित करता हूं, तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम हमारे आदेश से सर्वत्र कृष्ण नाम का हो, कृष्ण भक्ति का हो। महाप्रभु भावाविष्ट होकर चलते चलते गोदावरी के तट पर आए, गोदावरी नदी को देखा, यह नदी देखे माने ये कालिंदी, यहां पर्वत देखे माने गोवर्धन, वट वृक्ष देखा तो बंसीवट, यहां पर भी जहां हम लोग आज गए थे टोटा गोपीनाथ, चटक पर्वत गोवर्धन, गोवर्धन है कि नहीं है ये तुम्हारे भावना के ऊपर में निर्भर है। महाप्रभु जी ने तो देखा ये गोदावरी नदी है, जमुना नदी, किंतु नदी कौन सी, समुद्र। महाप्रभु जहां जहां बंद देखते हैं उसको वृंदावन, तुम क्या समझते हो, तुम्हारा यदि भावावेश ऐसा ही है कि कृष्ण की स्फूर्ति हो तब तो ठीक है, नहीं तो जो है उसको उसी को मानो, कल्पना करने से नहीं होगा। महाप्रभु जी ने देखा, अरे ये तो हम टोटा गोपीनाथ अतः तो हम वृंदावन में आए हैं, पासी में जमुना नदी बह रही है, पासी में गिरिराज गोवर्धन है, वहां बंसी बट है, और वहीं पर देवदासी को गान करते हुए देखा, मुग्ध हो गए, दौड़े एकदम भाव अविष्ट होकर। हमारा आदर्श तो ये है, ऐसा ही हमको भक्तजन करने पर ऐसा होना चाहिए, किंतु जिस स्टैंडर्ड में हो उसी स्टैंडर्ड के अनुसार में आचरण और व्यवहार करो, उसका उल्लंघन मत करो, उसका उल्लंघन मत करो। तीरे बन देखी हैल स्मृति हैल वृंदावन, वृंदावन को देखा। महाप्रभु गए वृंदावन में, और वृंदावन में गए वो सर कालिय, वहां किस चीज की भ्रांति हुई, गोवर्धन में गए तो गोवर्धन तो है ही है, वहां पर क्या भ्रांति हो, कृष्ण लीला स्फूर्ण लगी, जो जो लीलाएं उस समय में हुई थी कृष्ण के समय में, वो लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। कोई भी व्यक्ति गोवर्धन नंदगांव बरसाना जाता है तो भागवत तो उसके सामने आ जाता है, यदि साधारण रूप में भी श्रद्धालु रहे और थोड़ा सा संग किए हुए रहे तो हो जाता है स्मृति। कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, इसी गोवर्धन में प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, उनकी प्रत्येक कंदराओं में गुफाओं में कृष्ण की बड़ी विचित्र सखाओं के साथ में, विशेष करके गोपियों के साथ, गोप रमणियों के साथ में उनकी लीलाएं हुई। क्या क्या लीलाएं हुई जिसका गोस्वामियों ने वर्णन किया, श्रीमद भागवत में वर्णन किया, विशेष करके भागवत में उन लीलाओं का उतना वर्णन नहीं है जितना कि रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी के, जिसमें जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू में बिंदा आनंद वृंदावन चंपू में ये सब कहा है। यदि भक्ति करना है तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने संस्कृत कभी नहीं सीखा, संस्कृत अपने आप आ गई, भाषा आ जाती है, उसमें व्यर्थ नष्ट करने से, समय नष्ट करने से नष्ट होगा। जो चीज हमको जरूरत है संस्कृत की टीकाएं हो गई, अब जरूरत क्या है संस्कृत पढ़ते उतने समय नष्ट, वो विद्या पूरी ही नहीं होगी, तो ये और पढ़े और पढ़े और पढ़े करते 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 फिर टोल का अध्यापक बन जाएगा, प्राध्यापक बन जाएगा, और धीरे 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 उसी में लगा रह जाए, असल जो भक्ति रह गई वो छूट जाती है। तो इस प्रकार से गोदावरी में पहुंचे, जमुना को भ्रम हुआ, स्नान करके घाट को छोड़ करके वहां पर हजारों लोग आते हैं, कोलाहल होता है, और पास ही में बैठ करके कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे हैं।
Which is appropriate for pure Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu would accept Madhukari from them. He would only eat in their homes. Nowadays, many are born in Brahmin families, but they don't follow Yam and Niyam, the rules and regulations, which are meant actually for Brahmins and for pure Vaishnavas. So Srila Gurudev explained that if we will accept donations, we'll accept food, especially from those who are not following the principles of devotional service, proper sadhachar, proper behavior, then by accepting their alms, by eating their food, it will create many obstacles in bhajan and will not be able to make advancement. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he would accept only from qualified persons who had cooked, prepared and offered to their deities, to their Thakurji. Afterwards then he would accept Mahaprasadam from them. So we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his behavior, by his own example, he taught so many principles which are to be followed by those who are under his guidance. So when he was leaving any place, he would tell those people, Yari Dekha Tahika Krishna Upadesh, Amarat Yari Guru Anand Taridesh. Whoever you meet, you should tell them the instructions of Krishna. And Amarat Yari, on my order, you become Guru and deliver everyone. So if anyone will say, I am not qualified. No, Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, Amara Adhyaya, on my order. That means, if you follow my instruction, I will give you power, I will give you inspiration, and you will not fall down into the waves of Vishaya Taranga, the waves of sense gratification. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu continued on his journey, and he came to the bank of Godavari. What is his mood? He is absorbed in transcendental emotion. Bane deki brahma hoy ei Vrindavan, Shaila deki brahma hoy ei Govardhan, Yahanadi deki taha mane kalindi, Mahabhava veshe prabhu nache pare kande. He is going here and there. If he would see a forest, he would think, this is Vrindavan. If he saw a hill, he would experience, this is Giriraj Govardhan. If he saw a river, like Godavari, how did he feel? Oh, this is Jamuna. In this way, Mahaprema Veshi Prabhu, he was absorbed in Mahaprem. So, we see that when Mahaprabhu was here in Jagannath Puri, when he saw Chatak Parvat, at that time, he said, this is Giriraj Govardhan. Actually, ontologically, this is not Giriraj Govardhan, but by his mood, he's seeing it in this way. Wherever he looked, any hill, any river, any forest, it will remind him of the pastime places of Krishna. So, he would see here in Puri, Bongsi Bhat, Jamuna. Also, he went to embrace one Devi Dasi, who was singing Shita Kamala Kuchamandala Drita Kondala Hai. So this behavior of Chaitanya Mahaprabhu, it cannot be imitated. When we go on parikrama, what do we see? When Chaitanya Mahaprabhu would do parikrama, then he would actually directly have spurti, a vision of the eternal pastimes of Radha and Krishna. So we cannot imitate him, but this stage will come naturally if we follow the process of bhakti. Srila Gurudev said, don't try to transgress the stages in the progressive development of bhakti. Shada, bhajana kriya, anartha niriti, nishta, ruchi, asakti, bhav, or in this stage bhav and ayana in brain, then some realization like this can begin to come. So, when Chaitanya Mahaprabhu would do parikrama, when he went to Brajamandal, and he saw Giriraj Govardhan, what did he see? Pramada madana lila kandare kandare te rachiyati navayuna dandam asminna mandam. He saw that in all the caves and the kunjas of Giriraj Govardhan, Krishna was playing with his friends, and especially he saw how Krishna would meet with Srimati Radhika and Brajaramani. So he saw all those pastimes which have been described in Srimad Bhagavatam, and many confidential pastimes which have not been directly disclosed by Shukadeva Goswami Pad. Then our Goswami Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami and others, especially Srila Kavi Kanapur in his Ananda Vrindavan Champu, and Srila Jiva Goswami Pai in his Sri Gopal Champu, they have revealed many confidential things that Srila Goswami is only hinted at. So Srila Gurudev explained, there's no need to learn Sanskrit. Don't waste your time. Why? Because by associating with Sadhguru and pure Vaishnavas in hearing and chanting, naturally all the knowledge of Sanskrit, all the verses of Srimad Bhagavatam, their confidential meanings, which can never be understood by any amount of panditya, any amount of scholarship, they will awaken automatically. But those who will follow the path of scholarship, then they will think, I have not completed my study, so I have to study more. Then they will think, I have still not completed my study, I will have to study more in this way until they are old and their teeth are falling out. They will go on studying, and their life is lost and wasted, and they have not done bhajan. So we should not be derailed by the allurement of maya, the material energy, chasing after panditya. So, in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arrived at the Ghat, where many devotees were taking baths. And he took his bath in Godavari, then he sat down on the bank of the river and began to chant, absorbed in the nectar of Sri Harinam.
Thank you. Oh, Krishna Kanta, standing one kirtan. No need. Have anyone? Oh, he has. Will you still sing?
Good.
Thank you.
Thank you. और ये कीर्तन कर रहे हैं। इसी समय में राय रमानंद जो वहां के गवर्नर थे प्रताप रुद्र के प्रतिनिधि डोला में चढ़, डोला माने पालकी, आज से 500 वर्ष पहले की बात है। अब तो मोटर कार हो गई है, कितनी कितनी व्यवस्था हो गई है, और वो हजारों ब्राह्मणों वैदिक ब्राह्मणों के साथ में आ रहे हैं जो पुरुष सूक्त श्री सूक्त इत्यादि जानते हैं, साधारण नहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग, और उनके साथ में वो लोग पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ कर रहे हैं। और ये पालकी से उतरे, स्नान किया, स्नान करिवारे आईला बाजना बजा, बाजे गाजे बज रहे हैं, साधारण आदमी नहीं, राजा है ना, साथ में संतरी और पुलिस और ये सब फोर्स भी उनकी होगी, बहु वैदिक ब्राह्मण है जो वेद शास्त्रों को जानते हैं, विधि मत कही रहती हूँ स्नान आदि तरफ विधि पूर्वक पुरुष सूक्त का उच्चारण श्री सूक्त का उच्चारण करते हुए स्नान किया, और वैदिक रीतियां हैं स्नान करने के लिए, जब तीर्थ में जाना चाहिए तो केश कटवा देना चाहिए और उपवास रहना चाहिए, ये सब वैदिक नियम है। और वहां ठाकुर जी के दर्शन के पहले विद्वत स्नान इत्यादि कुछ खाना पीना नहीं, और यहाँ तो हम लोग पेट पूरण करके तब जाते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो ये वैदिक विधियां थी, वैदिक विधि के अनुसार में महाराज प्रताप रुद्र जी ने ये राय रामानंद जी बाजा बजाते हुए और वाय विधिवत स्नान किया। प्रभु तह देखी जानी लेने यही राम रहा, महाप्रभु ने देखा, लौकिक लीला कर रहे हैं, अंतर्जामी के रूप में देखा नहीं, यहां लौकिक लीला सुन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनसे कहा था, राय रामानंद जी महाराज प्रताप रुद्र के वहां पर प्रतिनिधि और गवर्नर हैं, शासन करता है महाराजा ही, उनको सब लोग जानते हैं राजा, इसलिए उनके लक्षणों से ये जान गए कि ये राम है, अंतर्जामी के रूप में नहीं, इस रूप में उन्होंने समझा। और महाप्रभु की इच्छा कि इनसे मिले, तथापि धैर्य धरि प्रभु रहिला बसिया, राय रामानंद आईला अपूर्व सन्यासी देखिया, उधर राय रामानंद जी ने स्नान किया विधिवत, तर्पण किया, दान दिया, सब कुछ किया, और देखा जी घाट के पास ही में एक सूर्य समान तेजस्वी एक सन्यासी बैठा है और नाम संकीर्तन कर रहा है। महाप्रभु जी तो ऐसे ही गौरवर्ण के, और विशेष करके लाल कपड़े में यदि हो तो कैसा सौंदर्य खिल उठेगा, लंबुज अजान उलंबित भुजा आकृति प्राकृति तुम्ही ईश्वर लक्ष, लंबी लंबी भुजाएं बड़े सुंदर देखने में, और जो चिन्ह है भगवान के वो सब लक्षण उनमें हैं, उनको अपूर्व सन्यासी देख करके आए निकट, सूर्य सत समकांति अरुण बसान सुबलित प्रकांड देव कमल लोचन। महाप्रभु अपने हाथ से भी कितने थे, चार हाथ, 3.5 हाथ आदमी अपने हाथ से होता है, महाप्रभु प्रकांड शरीर अजान लंबित भुजा, ऐसे ईश्वर के लक्षण सब। इनको देख करके देखिया तहान मन हैलो चमत्कार, ऐसा सन्यासी देख करके उनके मन में चमत्कार हुआ, क्यों आज तक ऐसा सन्यासी हमने अपने जीवन में नहीं देखा, और उनको दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु को। ये नियम है, पिता भी होगा तो सन्यासी को प्रणाम करेगा। और दूसरी बात है वैष्णव पल्ट में, जो महाप्रभु भी अपनी मैया को सन्यास लेने के बाद भी प्रणाम करते, वो एक्सेप्शन है, किंतु साधारण रूप में यही है, उसको भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप देखा जाता है, इसे आदर करना चाहिए। उठी प्रभु कहे उठ, कह कृष्ण कृष्ण, बस यही। आप कैसे हैं, कुशल है, प्रारामानंद, ये नहीं पूछा। महाप्रभु जी ने उनका उठो, वो जमीन में पड़े हुए हैं, दंडवत साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं राजा होकर के। आजकल कोई राजा किसी वैष्णव सन्यासी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा? बहुत मुश्किल, नहीं करेगा। धनी आदमी ही सहजी रूप में साष्टांग ने वहीं से हाथ जोड़ करके सिर झुका दिया, अथवा वो भी नहीं, बल्कि ये दौड़ करके आगे सन्यासी जाएंगे उनके पास में, उनको अभिनंदन करके ले आएंगे अपने आप। आज हमारा आश्रम धन्य हुआ कि आप जैसे धनी मानी व्यक्ति हैं। तारे आलिंगित प्रभु हरि सतृष्ण तथा पिछले तुम राय रामानंद, मिलने के लिए आतुर हैं। जैसा देखा सार्वभौम ने कहा था वैसा ही लक्षण है, ये राय रामानंद ही है। इसलिए महाप्रभु जी को इनको मिलने के लिए बड़े सतृष्ण हो गए। क्यों कहें, उन्होंने कहा जी आप ही राय रामानंद हैं, तो उन्होंने उत्तर दे दिया हम ही दास शूद्र मंद, मैं वही शूद्र और अधम दीनहीन राय रामानंद, उत्तर दिया। महाप्रभु जी किस प्रकार से त्रिणादपी सुनिच होकर के प्रश्न कर रहे हैं, और राय रामानंद भी कैसे दीनहीन हो करके उत्तर दे रहे हैं। ऐसा कोई राजा महाराजा होता तो ऐसा उत्तर दे, मैं दीनहीन और शूद्र अधम ये हूं, कोई नहीं कहा। स्वाभाविक रूप में ये वार्तालाएं चल रही है। त्रिनार्दक वैष्णव से मिलन हो तो ऐसे ही व्यवहार होता है, इसी प्रकार की बात। प्रेमावय से प्रभु भृत्य दोहे अचेतन, तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ लिंगन, जब सुना जहां यही राय रामानंद है तो स्वाभाविक प्रेम हो गया। दोनों दोनों का लिंगन करके श्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण्य दुहार मुखे तो सुनील गदगद कृष्ण, दोनों कृष्ण कृष्ण करने लगे और दोनों दोनों का लिंगन करके गिर पड़े मूर्छित होकर के भाव। स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम किसको कहते हैं? आत्मानुबंधी स्वरूपानुबंधी प्रेम। राय रामानंद जी कौन है? ये तो विशाखा सखी हैं, या ललिता मान लो, या अर्जुन सखी, ये है विशेष करके विशाखा सखी है। और महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण है। इनका जो स्वाभाविक प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम उमड़ उठा और भावाविष्ट हो गए। वैदिक ब्राह्मण जो थे बड़े चमत्कृत हो उठे, ये तो अनहोनी सी बात, विचार कर रहे हैं वो लोग वैदिक ब्राह्मण है, कोई सन्यासी ब्राह्मण ब्राह्मणी सन्यासी होगा? एक तो ये बात, ब्राह्मण का अतिरिक्त अन्य कोई सन्यासी? हम लोगों में भी ब्राह्मण संपन्न गुण न हो और शूद्र जाति का हो और वही स्वभाव में हो तो उसको सन्यास देने से उसे गर्व और उसका पतन हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण का जो स्वाभाविक गुण है शांति सहिष्णु, और जो गुण है वो गुण हो तब उनको संन्यास देना चाहिए, किंतु आज कुछ व्यतिक्रम होने से उसका कुफल भी होता है, इसलिए देख सुन करके संन्यास किसी को दिया जाए, नहीं तो उसको अभिमान हो जाएगा, वो रीतियों को मानेगा नहीं। वो लोग चमत्कार हो उठे, भाई ये तो सन्यासी ब्रह्म तेज के समान है, ब्रह्म के समान, और देखने में आकृति और प्रकृति में ये ब्रह्म के समान है, और रामानंद महाराज हैं और बड़े धीर गंभीर हैं, शास्त्रों का इनको ज्ञान है, और एक सन्यासी को देख करके उसे आलिंगन करके और ये मूर्छित होकर के गिर पड़े, ये ऐसा क्यों? ये तो बड़े गंभीर है। अरे रामानंद जी सर्व शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ पारंगत, श्रीमद् भागवत के परम पंडित, और कभी भी नई रचना करने वाले पद और ये सब, किंतु आज महाप्रभु देखते हैं ये सारा धैर्य सब समाप्त हो गया और उनके चरणों में लौटते हैं। महाप्रभु ने उन्हें उठाया, आलिंगन किया, रो भी पूछी, स्वाभाविक प्रेम बसो। कौन सा प्रेम स्वाभाविक? हाँ वही, ये विशाखा और ये है कृष्ण, उस प्रेम उदित हुआ, दोनों मूर्छित होकर के गए। विप्र सब विचार कर रहे हैं, समझ नहीं सके। महाप्रभु जी ने देखा जी ये ब्राह्मण सब वैदिक, ये भी जाति हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए अपने अश्रु कंप रोमांच इत्यादि को उन्होंने संवरण कर लिया और सुस्त होकर के दोनों बैठे। महाप्रभु जी हंस करके बोले, मुस्कुरा कर बोले, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने हमसे तुमसे मिलने के लिए कहा था और मैं आया, मैं यहां पर आया केवल तुमसे मिलने के लिए, रामानंद जी से, आपसे मिलने के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं था। राय कहे सार्वभौम करे मोरे भित्त ज्ञान, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे दास ज्ञान करते हैं, इसलिए परोक्ष रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आपको यहां पर भेजा, आज सफल हो लो मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म आज मेरा सफल हुआ। मनुष्य जीवन किसमें सफल होता है? होने का कारण क्या? यदि साधु संघ हो और उसमें कृष्ण भजन करे और कुछ उपलब्धि कर ले तो मनुष्य जीवन सफल है, न था मनुष्य जन्म सफल नहीं है। उनको धर्म नहीं ना पशु भी, पशु कहा गया, गधा घोड़ा न इत्यादि सुकर कुकर उनको बतलाया गया शास्त्र, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, और बिलबिलाते हुए पशुओं की भांति मरेंगे और फिर जन्म लेंगे। और सफल मनुष्य जीवन किन का है? साधु संघ में हरिनाम आश्रय करके, गुरु कर्ण करके, धीरे 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 श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जीवन का निर्वाह किसी प्रकार से कर लेंगे, अपना कर्तव्य कर्म करेंगे जीवन का निर्वाह के लिए और बाकी समय भजन में लगाएंगे, तो मनुष्य जीवन सफल है। तो आज कहते हैं आज मेरा जीवन सफल हुआ क्यों? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आपके जैसे आपको मेरे लिए भेजा। रामानंद जो कह रहे हैं अस्पृश्य 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 अस्पर्शी ने हया कहा प्रेमाधीन। ओ मैं समझ गया, सार्वभौम भट्टा जी के मेरे ऊपर में इतनी कृपा है कि आप सन्यासी और ब्राह्मण सन्यासी और ब्रह्म सन्यासी होकर के भी मुझे शूद्र को जान करके भी और हमारा स्पर्श किया। कहा मुई राज सेवक विषय शूद्र सा कहा मैं, और यह कह करके एक श्लोक पढ़ा उन्होंने, महत विचलनाम निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम निशेषाय भगवान नान्य था कचे कल्पते किसी। महत विचलना, आप जैसे, ये कौन कर रहा है? नंद बाबा कर गर्गाचार्य को उनके घर में नामकरण करने के लिए खुद पधारे, नंद बाबा ने बुलाया नहीं तभी आए, वो आए अपने लाभ के लिए, वसुदेव जी उनका पुरोहित, वसुदेव जी के पुरोहित हैं इसलिए उन्होंने भेजा, इसलिए गुप्त रूप में वहां आए उसका नामकरण करने के लिए बलदेव जी का, और साथ साथ में कृष्ण का भी यहां पर हो जाएगा, इसलिए आए। और वो कह रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा कैसे? कृष्ण के पिता। केवल एक जन्म के ही पिता नहीं, जन्म जन्मांतर के नित्य पिता। वो कह रहे हैं महत विचलन। साधु संतों का महत, महत कौन है? महान सबसे, महतोप महियान, अणोरअपि अणियान, कौन है? कृष्ण। उनकी जो सेवा करने वाले हैं, सेवानिष्ठ हैं, कृष्ण ही के सेवानिष्ठ, वो महत व्यक्ति हैं। दूसरा महत व्यक्ति नहीं हो सकता। वो लोग अपने आश्रम से जब निकलते हैं, चलते हैं, तो किस लिए निकलते हैं? गृह नाम दीन चेत सा। गृही लोग, जो गृह में फंसे हुए हैं, जिनको फुर्सत नहीं है घर से निकलने का। साधु संग करेंगे हम जाकर के, वहां पर आएंगे इसलिए नहीं, वो महत्पुरुष ऐसा कर सकते। गृही लोग गृह कार्यों में आसक्त रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है हम ये साधु संन्यासियों के पास में, महत्पुरुषों के पास में जाएं। यदि महत्पुरुष के यहां जाना भी होगा तो वो समझेंगे नहीं महत कौन है, गलत व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे। दीन चेतसा। गृह लोग कौन है? दीन चेतसा, बड़े दीन है गृह। ऐसे लोगों के लिए निशेष है, उनका कल्याण करने के लिए और कोई काम नहीं है, न भगवान न लत, उनका कोई काम नहीं है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो भी ऐसे गृह व्यक्तियों के प्रति बोल जाते हैं। और भी एक ठीक पर्ल श्लोक ऐसा ही है, वो क्या है? ये तो चैतन्य चैतन्य श्रीमद भागवत में, जिसको सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार कहा था, जिसको आज याद भी याद नहीं, और अब देर भी हो जाएगी। आज संक्षेप में कुछ बोलो, अब इसकी हम व्याख्या हम कल करेंगे विशेष रूप में। यस सो टू स्पीक नेक्स्ट वन, बिकॉज द टाइम ऑफ आरती हैज कम।
Now Srila Gurudev is describing the very moving moment of the first meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramananda. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting at the ghat and observing Harinam Sankirtan. Gurudev gave some examples. What type of Naam? Harayaraya Namakrishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shivadu Siddhan. Giridhari Gopinath Madan Mohan. Or sometimes Krishna 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 Hey, Krishna Krishna Raksham, O Krishna, protect me, nourish me. Superior to this, superior to all, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare. And by uttering Krishna Nam, Sri Chaitanya Mahaprabhu became completely absorbed in bhava, transcendental emotion. At that time, Sri Rayanamanda, who was the governor of Vidyanagar, in the government of Sri Prataparudra Maharaj, he arrived there. But he was no ordinary person. He was coming to take bath, but how? He was riding on a palanquin, carried by many servants. He was accompanied by hundreds of brahmanas who were uttering the mantras of the Vedas. They were chanting Purusha Sukta, Sri Sukta, and other mantras of the Vedas. He was surrounded by so many ministers, guards, soldiers. There were musicians playing upon musical instruments.
तो आपसे बात करना चाहते
थे. According to Vedic Riti, the rules and regulations for visiting a holy Kshetra, which are mentioned in the Shastra. The Shastras have given injunctions that when you come to a holy Kshetra, you should shave your head. You should fast on that day. You should take a bath. You should wear pure cloth and have darshan of Thakurji. After that, then you can take some Mahaprasada. But Gurudev said, what do you do now? Just come and fill our belly, and then afterwards go and have darshan of the deity with the clothes we were wearing the previous night. So, but Shivananda Rai, he took his bath with following all the rules and regulations of the Vedas. Sri Chaitanya Mahaprabhu was there and absorbing Harinam. He was not absorbing the mood as if he is Paramatma or Bhagavan Ishwara, being omniscient and knowing everything, because he's performing Lokik Lila, human-like pastimes. When Sri Ramananda Rai came, he was very powerful. All used to see him like a king, and he had power, like a king, to chastise and punish anyone. When he arrived there, he took his bath, he distributed charity to the brahmanas, and then he looked and noticed that one sannyasi was sitting on the bank of the river chanting, and he was effulgent as the sun. How beautiful he looked, dressed in saffron cloth, and his body had all the symptoms of an incarnation of Bhagavan. O Mahapurush, Ajaru Lambita Bhujo Kanaka Avadato. His arms were very long, reaching down to his knees. His eyes were very broad, like lotus flowers. And he measured 3.5 times this length, from here to here, in height. This is called Nigrodha Parimandala, the symptoms of the incarnation of Bhagavan or a Mahapurush. So when Sri Vairamananda saw him, he was thoroughly astonished by his beauty, and he approached him. He thought, in my life I have never seen anyone so attractive. And when he arrived at the side of Chaitanya Mahaprabhu, he gave Dandavat Pranam to him. Because this is, you know, this is a regulation. In Vedic culture, you should also give Pranam to mother and father when you speak of such a qualified person in the renunciation. Gurudev commented that today, what to speak of a great king like Rai Ramananda, even wealthy persons, they find it very difficult to have the inclination to give pranam to sannyasis. But Ramananda Rai, very humbly, he came and gave pranam. Then Mahaprabhu noticed that he was there and lifted him up. Mahaprabhu asked, are you Rai Ramananda? And Rai Ramananda replied, I am simply your das. I am your servant. I am a Shudra. I am Manda, slow and low, and fallen and a despicable person. So, how Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his identity in a very humble way, and Sri Ramananda Rai replied, this is the Tinada Pisunichi Bhav. Humble food. Pure Vaishnavas, they consider themselves to be most insignificant. So when they meet together, their meeting should be very sweet like this. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Rai Ramananda. And when they embraced each other, at that time, all asmasantic bhavs, trembling, tears flowing from their eyes, perspiration, faltering of the voice, fading of their bodily complexions, all these sattvic bhavs came and both fainted and fell. What is this? This is swabhavik prem, natural love. Because Rai Ramananda is Vishakha Sakhi and Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And in this Leela, they are meeting for the first time. So naturally they are overwhelmed with prem. So this love, it is swabhavik, natural love. What type of love is natural? That love which is Swarupa Anubandhi. In other words, the only type of natural love is that love which is coming out from the heart due to one's constitutional position. Constitutionally, Ramananda Raya is most beloved of Sri Krishna. Right? So that mutual love is Swarupa Anubandhi. It is naturally flowing because of their constitution. Only so the love which is Swarupa Anubandhi is natural. Everything else is unnatural, artificial. So when the Brahmanas who were there, so then embrace each other, and so then become overwhelmed in transcendental love, they were very astonished. Why? On the one hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. So sannyasi is meant to be very great. And Ramananda Rai also is so gambhir, very great, and very learned in all shastras. Ramananda Rai is by caste sudra, but this sannyasi is Brahman. Actually, Brahmanas should take sannyas. If someone will give sannyas to someone who is not a Brahman, then they will fall. But nowadays, there's some concession, and those who have the natural qualities of a Brahman, they are accepting the renounced order under guidance of their qualified spiritual master. So, how is this that this sannyasi is embracing a sudra, and this sudra who is very grave is become overwhelmed with so many emotions? So the Brahmins could not understand because they were not Shuddha Vaishnava. They are not pure Vaishnavas. And therefore, they could not understand the appearance of the sattvic bhavs. So they are considered to be vijatiya. They are not very close and near and dear to Mahaprabhu and Roy Ramananda. They have some unfavorable mood. So Chaitanya Mahaprabhu, when he composed himself and his emotions subsided, he said, I have come here to meet with you, not for anything else, just to meet with you. So then Roy Ramananda, he replied, oh, Sarva Bhoma Bhattacharya considers me his servant, and therefore, in all ways, directly or indirectly, or in a hidden way, he always acts to bring about my welfare. So he has sent you to meet with me to bring about my welfare. Srila Gurudev commented that if someone will have sadhu sangha and come under their guidance, then some realization of Krishna bhakti will come, and that life is successful. But without having qualified association and coming under their guidance, then one is living like an animal. He will die like an animal, and his next life he will become an animal like a dog or a horse. The life is completely wasted. So we should try to take shelter of Sadhguru and Harinam Sankirtanam and gradually progress through the stages Sada, Anatta Nivritti, Nishtaruchi, Asakti, and make our life successful. Outwardly, one may be situated in his social position and performing duties. Tanestita. One may be situated in his social position and do his external duties. But the rest of the time, he should strongly engage in bhajan, and gradually his life will become successful. So Ramananda Rai said, I understand that Sarvabhauma Bhattacharya is so merciful to me that he has sent you and you have embraced me. So then Rai Ramananda, he uttered one sloka of Srimad Bhagavatam, Mahat Vicharanam Rinam, Grihinam Dina Chetasam, Misrayasaya Bhagavan, Nanyata Kalpate Kojit. This verse was uttered by Nanda Maharaj. When Krishna was born, then Vasudeva Maharaj, he sent Gargacharya secretly from Mathura to Gokul. And Gargacharya, he performed the Nam Sanskaran, the name-giving ceremony of Krishna and Balaram. So at that time, Nanda Maharaj, when he met with Gargacharya, who is a great Vaishnava, then the Nanda Maharaj said this, that you are Mahat. Who is the Mahat?
Explain tomorrow.
Krishna is?
Oh. Explanation tomorrow, because today is so late.
only one two more words could there.
Yes. 1 minute?
Only, yes, 1 minute. Almost finished that.
So, who is Mahat? Krishna, he is the greatest of the great and the smallest of the small. He is greatest in all respects. So those who are the servants of that great personality, they are also Mahat. So Mahat Vichay Namrinam. Those great personalities, they are wandering here and there. For what purpose? Because those who are Grihinam Bina Chetasam, they are attached to their household life. They cannot go here and there. They have no opportunity to meet with the sadhu. So the sadhus, they wander here and there to give those who are attached to your household life an opportunity to have sadhu sangha. Now who is speaking this verse? Nanda Baba. Nanda Baba is not an ordinary person. He's the father of Krishna. Birth after birth, he's the Nitya father, eternal father of Krishna. Yet he himself is honoring Gargacharya by these words. So then, the Gurudev concluded, such great personalities, they come to meet with those who are Dina Chetasam. Their consciousness is very low because they are attached to temporary household life. And the two devotees, they go to meet with them. Their only purpose is to help that person. They have no desire for self-gain. They don't come for any other purpose. Srila Gurudev will continue this katha tomorrow.
एक रिक्वेस्ट है जगन्नाथ जी अनुग्रह करके बहुत ही सुंदर प्रसाद भेजा है चावल और मीठी दाल और तरकारी दिया हुआ मालपुआ खिचड़ी चावल जिसमें कि ये कनिका प्रसाद और भी बहुत सी चीजें हैं इसलिए जगन्नाथ जी भेजा है तो इसलिए बिना प्रसाद पाए जो जाएगा वो महादुर्भागा है
Can you tell any good?
They understand.
Today, Lord Jagannath or Bimla Devi has sent a very delicious prasad. Anna, sweet, dal, dalema, malpua, kicharanna, and so many things. So if today they are not taking prasadam, not serving prasadam, they are
most
unfortunate. So you should all take prasadam here.
After aarti,
at once you can sit and prasad will come and will be served. वो क्या है?
महत स्वभाव ही कारी से पाव.
ये तो चेतन ने चेतन. श्रीमद् भागवत में. जिसको प्रसाद हम भट्टाचार्य ने एक बार कहा था जिसको आज याद याद नहीं अब देर भी हो जाएगी आज संक्षेप में कुछ बोलो अब इसकी हम व्याख्या हम कल करेंगे विशेष रूप में Yes, so they speak. Next one, because the time of aarti has come.
So now Srila Gurudev is describing the very moving moment of the first meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting at the ghat and observing Harinam Sankirtan. Would have gave some examples. What type of Naam? Harayaraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Srimadu Sudan Giri Dhanari Gopinath Madan Mohan Or sometimes Krishna 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 Hey Krishna Krishna Raksha Mam Oh Krishna Protect me, nourish me Superior to this, superior to all Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram. And by uttering Krishna Nam, Chaitanya Mahaprabhu became completely absorbed in bhava, transcendental emotion. At that time, Sri Vairamananda, who was the governor of Vidyanagar, in the government of Sri Prataparudra Maharaj, he arrived there. But he was no ordinary person. He was coming to take bath, but how? He was riding on a palanquin, carried by many servants. He was accompanied by hundreds of brahmanas who were uttering the mantras of the Vedas. They were chanting Purusha Sukta, Sri Sukta, and other mantras of the Vedas. He was surrounded by so many ministers, guards, soldiers. There were musicians playing upon musical instruments. And then, when he arrived there, Sri Vairamananda, he took bath in that holy place according to Vedic Riti, the rules and regulations for visiting a holy Tirtha, which are mentioned in the Shastra. The Shastras have given injunctions that when you come to a holy Tirtha, you should shave your head, you should fast on that day, you should take a bath, you should wear pure cloth and have Darshan Thakurji. After that, then you can take some Mahaprasadam. But Gurudev said, what do we do now? Just come and fill our belly, and then afterwards go and have Darshan of the deity with the clothes we were wearing the previous night. So, but Sri Vairamananda arrived. He took his bath with following all the rules and regulations of the Vedas. Sri Chaitanya Mahaprabhu was there and absorbed in Harinam. He was not absorbed in the mood as if he is Paramatma or Bhagavan, Ishwara, being omniscient and knowing everything, because he's performing Lokik Lila, human-like pastimes. When Sri Ramananda Rai came, he was very powerful. All used to see him like a king, and he had power, like a king, to chastise and punish anyone. When he arrived there, he took his bath, he distributed charity to the brahmanas, and then he looked and noticed that one sannyasi was sitting on the bank of the river chanting, and he was effulgent as the sun. How beautiful he looked, dressed in saffron cloth, and his body had all the symptoms of an incarnation of Bhagavan. O Mahapurush, Ajaru Lambita Bhujo, Kanaka Avadato. His arms were very long, reaching down to his knees. His eyes were very broad, like lotus flowers. And he measured 3.5 times this length, from here to here, in height and in width. This is called Nigrodha Parimandala, the symptoms of an incarnation of Bhagavan or a Mahapurush. So when Sri Vairamananda saw him, he was thoroughly astonished by his beauty, and he approached him. He thought, in my life I have never seen anyone so attractive. And when he arrived at the side of Chaitanya Mahaprabhu, he gave Dandavat Pranam to him. Because this is Niyam, this is a regulation. In Vedic culture, you should also give Pranam to mother and father, what to speak of such a qualified person in the renouncement. Gurudev commented that today, what to speak of a great king like Vairamananda, even wealthy persons, they find it very difficult to have the inclination to give pranam to sannyasis. But Ramananda Rai, very humbly, he came and gave pranam. Then Mahaprabhu noticed that he was there and lifted him up. Mahaprabhu asked, are you Vairamananda? And Vairamananda replied, I am simply your das. I am your servant. I am a Shudra. I am Manda, slow and low and fallen and a despicable person. So, how Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his identity in a very humble way, and Sri Ramananda Rai replied, this is the Tinada Pisumikha. Humble food. Pure Vaishnavas, they consider themselves to be both insignificant. So when they meet together, their meeting should be very sweet like this. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Radhavananda. And when they embraced each other, at that time, all asmasatic bars, trembling, tears flowing from their eyes, perspiration, faltering of the voice, fading of their bodily complexions, all these sattvic bars came and both fainted and fell. What is this? This is swabhavik praying, natural love. Because Rai Ramananda is Vishakha Sakhi and Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And in this leela, they are meeting for the first time. So naturally they are overwhelmed with praying. So this love, it is swabhavik, natural love. What type of love is natural? That love which is sarupa anubandhi. In other words, the only type of natural love is that love which is coming out from the heart due to one's constitutional position. Constitutionally, Ramananda Rai is most beloved of Sri Krishna. Right? So that mutual love is sarupa anubandhi. It is naturally flowing because of their constitution. Only the love which is surup anubandhi is natural. Everything else is unnatural, artificial. So when the brahmanas who were there, so then embrace each other, and so then become overwhelmed in transcendental love, they were very astonished. Why? On the one hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. So sannyasi is meant to be very great. And Ramananda Rai also is so gambhir, very great, and very learned in all shastras. Ramananda Rai is by caste sudra, but this sannyasi is Brahman. Actually, Brahmanas should take sannyas. If someone will give sannyas to someone who is not a Brahman, then they will fall. But nowadays, there's some concession, and those who have the natural qualities of a Brahman, they are accepting the renounced order under guidance of their qualified spiritual masters. So, how is this that this sannyasi is embracing the sudra, and this sudra who is very grave is become overwhelmed with so many emotions? So the Brahmins could not understand because they were not Shuddha Vaishnava. They are not pure Vaishnavas. And therefore, they could not understand the appearance of the sattvic bhavas. So they are considered to be vijatiya. They are not very close and near and dear to Mahaprabhu and Rai Ramananda. They have some unfavorable mood. So Chaitanya Mahaprabhu, when he composed himself and his emotions subsided, he said, "I have come here to meet with you, not for anything else, just to meet with you." So then Rai Ramananda, he replied, "Oh, Sarva Bhauma Bhattacharya considers me his servant, and therefore, in all ways, directly or indirectly, or in a hidden way, he always acts to bring about my welfare. So he has sent you to meet with me, to bring about my welfare." Srila Gurudev commented that if someone will have sadhu sangha and come under their guidance, then some realization of Krishna Bhakti will come, and that life is successful. But without having qualified association and coming under their guidance, then one is living like an animal. He will die like an animal, and his next life he will become an animal like a dog or a whore. The life is completely wasted. So we should try to take shelter of Sadhguru and Harinam Sankirtanam, and gradually progress through the stages, sada, anatta niriti, nishta ruchi, asakti, and make our life successful. Outwardly, one may be situated in his social position and performing duties. Tane stita, one may be situated in his social position and do his external duties. But the rest of the time, he should strongly engage in bhajan, and gradually his life will become successful. So Ramananda Rai said, "I understand that Sarva Bhauma Bhattacharya is so merciful to me that he has sent you and you have embraced me. then Rai Ramananda, the uttered one spoke of Srimad Bhagavatam, Mahat Vicharanam Rinam, Vihinam Vina Chetasam, Nisraya Saya Bhagavan, Nanyata Kapate Kojit. This verse was uttered by Nanda Maharaj. When Krishna was born, then Vasudev Maharaj, he sent Gargacharya secretly from Mathura to Gokul. And Gargacharya, he performed the Nam Sanskaran, the name-giving ceremony of Krishna and Balaram. So at that time, Nanda Maharaj, when he met with Gargacharya, who is a great Vaishnava, then Nanda Maharaj said this, that you are Mahat. Who is the Mahat?
Explain tomorrow.
Krishna is?
Oh. Explanation tomorrow. Because today is so late.
So only two more words could be.
Mm-hmm. 1 minute?
Only, yes, 1 minute. Almost killing that.
So, who is Mahat? Krishna is the greatest of the great and the smallest of the small. He is greatest in all respects. So those who are the servants of that great personality, they are also Mahat. So Mahat Vicharanam Nirnam. Those great personalities, they are wandering here and there. For what purpose? Because those who are Grihinam Bina Chetasam, they are attached to their household life. They cannot go here and there. They have no opportunity to meet with the sadhu. So the sadhus, they wander here and there to give those who are attached to household life an opportunity to have sadhu sangha. Now who is speaking this verse? Nanda Baba. Nanda Baba is not an ordinary person. He is the father of Krishna. Birth after birth, he is the Nitya father, eternal father of Krishna. Yet he himself is honoring Gargacharya by his words.
So then,
the Gurudev concluded
that
such great personalities, they come to meet with those who are Dina Chetasam. Their consciousness is very low because they are attached to temporary household life. And the two devotees, they go to meet with them. Their only purpose is to help that person. They have no desire for self-gain. They don't come for any other purpose. Srila Gurudev will continue this katha tomorrow. Srila Ramananda Sambhavati.
एक रिक्वेस्ट है जगन्नाथ जी अनुग्रह करके बहुत ही सुंदर प्रसाद भेजा है चावल और मीठी दाल और तरकारी दिया हुआ मालपुआ खिचड़ी चावल जिसमें कि ये कनिका प्रसाद और भी बहुत सी चीजें हैं इसलिए जगन्नाथ जी भेजा है तो इसलिए बिना प्रसाद पाए जो जाएगा वो महादुर्भाग्य है
Can you tell anything good?
No, they understand.
Today, Lord Jagannath or Bimla Devi has sent a very delicious prasada. Anna, sweet dog, dalma, malpua, khichadanna, and so many things. So if today they are not taking prasadam, not serving prasadam, they are most unfortunate. So you should all take prasadam here.
After aarti.
After aarti, at once you can see it and prasad will come and will be served.